योएल अध्याय तीन, योएल अध्याय तीन पद एक, जिन दिनों में, वो तीसरे अध्याय में जाता है, और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंदवाई से लौटा ले आऊंगा। हम उन दिनों के करीब आ रहे हैं जब परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंदवाई से लौटा लाएंगे। योएल अध्याय तीन पद दो, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशोफात की तराई में ले जाऊंगा। अब यहोशोफात की तराई कहाँ है हम नहीं जानते। इस तराई के बारे में केवल यही कहा गया है, जहां तक हम जानते हैं ये तराई या तो यरूशलेम के करीब है या यरूशलेम में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किद्रोन की तराई है, लेकिन हमें याद है कि जकरिया ने कहा था कि जब यीशु अपनी सामर्थ और महिमा में अपने याजकों के साथ फिर आएगा, उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा और तब जलपाई का पर्वत बीचों बीच से फट जाएगा और इस दरार में एक नई तराई बनेगी। जब वहां यरूशलेम में वेदी के नीचे से एक नई नदी बहती हुई निकलेगी और ये नदी इस नई तराई से होते हुए यर्दन की घाटी से मृत सागर तक बहेगी। जब इस नदी का पानी मृत सागर में आएगा तो मृत सागर साफ हो जाएगा। ये नई घाटी जो यीशु मसीह के पुनः आगमन से और जलपाई पर्वत के फटने से बनेगी, हो सकता है कि यही यहोशोपात की तराई हो। उन्हें इसे कोई तो नाम देना होगा और किसी भी नाम की तरह यहोशोपात एक अच्छा नाम है और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये यहोशोपात तराई होगी, वो नई तराई जो पहाड़ के फटने से बनेगी, दरार जो जलपाई पर्वत के दो भाग हो जाने से बनेगी। मती के अध्याय 25 से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जब यीशु वापस आएगा वो देश देश की सारी जातियों को न्याय के लिए इकट्ठा करेगा। यहां योएल भी वही बात कहता है, वो सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशोपात की तराई में ले जाएगा। योएल अध्याय तीन पद दो में आगे लिखा है, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में उनसे मुकदमा लड़ूंगा। आपको याद है जब यीशु मसीह सब जातियों को न्याय के लिए इकट्ठा करेगा, वो उन्हें अलग अलग करेगा जैसा एक चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग करता है, और वो अपने दैने तरफ वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था और तुमने सुधी ली, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, हमने कब तुझे प्यासा देखा, कब हमने तुझे नंगा देखा। और वो कहेगा, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, यहूदियों को संबोधित कर रहा है, वो तुमने मेरे साथ किया। उनसे जो उसकी बाई तरफ है उनसे कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से निकलो और उस अनंत आग में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुम मिलने नहीं आए। हे प्रभु हमने आपको कब देखा, तुमने इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ नहीं किया, और इसलिए जातियों का न्याय उनके इसराइल के साथ किए गए व्यवहार के अनुसार होगा, और इसलिए मेरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य को इसराइल देश का एक समर्थक होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो संयुक्त राज्य के हैं आसान होगा, जो उस दिन न्याय में खड़े होंगे, अगर वे इसराइल के पक्ष में और समर्थन में गठबंधन रखेंगे। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जातियों का न्याय परमेश्वर के लोगों यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार पर आधारित होगा। जानकारी के लिए योएल अध्याय 3:2-3, मैं अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया, और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। सारी दुनिया में इसराइलियों को लोगों से कैसा भयानक व्यवहार मिला है। उदाहरण हिटलर का व्यवहार। वे परमेश्वर के लोग थे, फिर भी संसार ने उनके साथ बहुत भयानक तरीके से व्यवहार किया, इसलिए संसार परमेश्वर के सामने न्याय में खड़ा होगा। योएल अध्याय 3:4, हे सोर, सिदोन और पलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे सर पर डाल दूंगा। अब ये वचन मेरे लिए रोचक है, क्योंकि वो पलिस्तीन आदि के बारे में कह रहा है। वो सब इसराइल के विरुद्ध बुराई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, परंतु परमेश्वर वापस आ रहा है और तेजी के साथ बदला लेगा। यहूदी लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा लिया, पर उन्हें जवाबी हमले के द्वारा उत्तर मिला, जो कि उनके खिलाफ पहले के हमलों से ज्यादा खतरनाक था। लगभग ऐसे जैसे वे योएल के इस वचन को पूरा कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा, योएल अध्याय 3:5-7, क्योंकि तुमने चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मन भावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेम को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं, इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। जब रोम ने सन 70 में इसराइल को आखिरकार जीत लिया था, उस समय अनुमान है कि 16 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और लगभग 6 लाख को बंदी बना लिया था। इनमें से 17 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को गुलाम की तरह बेच दिया था, दूसरों को रोमन खेलों में इस्तेमाल किया और शेरों को खिलाया गया। केवल लंबे और बलिष्ठ पुरुषों को रोम ने विजयी मोर्चा के लिए रख लिया, जब कैसर तीतुस ने अपनी विजयी यात्रा निकाली थी और उसका मेहराब वृत्तखंड खड़ा किया गया था। केवल कुछ हजार लंबे और तगड़े को इस्तेमाल बंदियों की तरह रोम में परेड करवाकर ताकत दिखाने के लिए किया गया था, लेकिन बाकियों के साथ बहुत भयानक व्यवहार किया गया, जैसे कि यहां वचन भी बताता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, मैं उनको सारे संसार से जहां जहां वे बिखर गए लाने पर हूं और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सर पर डाल दूंगा। योएल अध्याय 3:8-9। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है, जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो। असल में यहां हर मिगदोन की लड़ाई के लिए बुलावा है, युद्ध की तैयारी करो। और कह सकते हैं अन्य जातियां इसका सही में जवाब दे रही है। आपने सुना कि अमेरिका के रक्षा बजट में क्या हो रहा है, खरबों डॉलर अगले कुछ सालों के लिए युद्ध की तिजोरी में निवेश किए गए हैं। रूस ने युद्ध की तैयारी कर ली है, अब हमें भी तैयार होना पड़ेगा। योएल अध्याय 3:9-10। अपने शूर वीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीटकर बर्ची बनाओ, जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। अब यशाया और होशे दोनों ने भविष्य का वो दिन देखा जब परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा और वे अपनी अपनी तलवारों को हल के फाल और अपनी अपनी बर्चियों को पीटकर हसिया बनाएंगे और युद्ध को ना जानेंगे। लेकिन ये अभी नहीं होगा। कोई राजनेता आपको अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं देने की कोशिश करता है कि आप उसको चुनाव में जितवा दें। वो कहता है कि वो शांति और समृद्धि के दिन लाएगा और सब अपनी तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाएंगे, तो उसकी मत सुनिए। वो बहुत जल्दी में है, वो समय से पहले कह रहा है। राजनीति के द्वारा इंसान वो नहीं करेगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक इंसानी सरकारें उन पत्थरों के द्वारा नष्ट नहीं हो जाती जो पहाड़ों से आएंगे। केवल तभी हम अपनी अपनी तलवारों को पीटकर हल के फाल और बर्चियों का हसिया बनाएंगे। लेकिन ये अभी तैयारी की पुकार है, जब जातियां बड़े अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठी होंगी। योएल अध्याय 3:11-13। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूर वीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में समानांतर लेखांश है, जब वो कहता है कि क्रोध का प्याला भर कर बह रहा है। वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में कहता है। योएल अध्याय 3:14। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है। यही वो तराई है जहां उनका न्याय होना है। योएल अध्याय 3:14-16। भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे, और यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइल के लिए गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर का सियोन से गरजने का एक और जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 10वें अध्याय में यीशु मसीह के आगमन का हमारे पास एक बहुत सजीव वर्णन है। परमेश्वर का ये पराक्रमी संदेशवाहक स्वर्गदूत इंद्रधनुषी कपड़ों में दैने हाथ में एक पुस्तक के साथ जो खुली है फिर से आएगा। अपना एक पाँव पृथ्वी पर और एक पाँव समुद्र पर रखकर कह रहा है कि इस संसार का राज्य अब हमारे परमेश्वर का और उसके मसीह का हो गया है। प्रकाशित वाक्य में ये कहता है वो सिंह की तरह गरजता है। इसके अलावा और बहुत सारी भविष्यवाणी भी है जो आपके सामने आने वाली है। वे आमोस 3:8 में है, लेकिन यहां योएल 3:16 में और यहोवा सियोन से गरजेगा, जैसे शेर अपने शिकार को जीतने या मारने के बाद उसके ऊपर खड़ा होकर खून से भरी दहाड़ लगाता है, ये गरज पूरे अधिकार या स्वामित्व विजय की होती है। इस तरह संसार पर जब यीशु फिर से आएगा तो एक पृथ्वी को फाड़ने वाली गरज होगी, जब यहूदा के वंश का सिंह अपनी पूर्ण विजय और स्वामित्व को घोषित करेगा। उसके शत्रु हारे हुए उसके वश में होंगे और वो अपना वैभव से पूर्ण शासन की शुरुआत करेगा। मैं उस गर्जन को सुनने के लिए नहीं रुक सकता। मुझे हमेशा सिंह और हाथी की गर्जन और चिंगधाड़ सुनना अच्छा लगता है जब हमारा प्रभु सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाई देगा। आकाश और पृथ्वी थर थराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान होगा। योएल 3:17। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किया रहता है वही हमारा परमेश्वर है और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा। लोग कहते हैं प्रभु तो आ चुका और अपना राज्य भी स्थापित कर चुका है। आपको मालूम है आप स्वर्ण युग में रह रहे हैं। परमेश्वर तो 1914 में ही आ गया था। हम प्रभु के राज्य के युग में रह रहे हैं। क्या ये गौरवपूर्ण नहीं है? समृद्ध राज्य। ओह, मैं निराश हूं, मैं इससे अच्छे की उम्मीद कर रहा था। नहीं, ये घटना अभी घटित नहीं हुई है। वे आपको ठगने ना पाए जो कहते हैं कि परमेश्वर का दिन पहले ही आ चुका है। जब वो आएगा तो किसी गुप्त स्थान में नहीं आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी। ये एक सबसे ज्यादा सार्वजनिक और प्रसिद्ध घटना होगी जैसे संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। योएल 3:17-18। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा ने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किया रहता है, वो ही हमारा परमेश्वर है और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे और उस समय पहाड़ों से नया दाक मधु टपकने लगेगा, टिलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शितिम नाम नाला सींचा जाएगा। एहेस्केल की भविष्यवाणी के अनुसार ये सोता जो यहोवा के भवन में से फूट निकलेगा वो एक बड़ी नदी में बदल जाएगा। जकरिया ने भी यही भविष्यवाणी की है, ये मृत सागर तक बहेगा, इसकी एक धारा दो भागों में बटकर भूमध्य सागर में जाएगी और फिर से ये शितिम नाम नाले में पेड़ों को सींचेगा। योएल 3:19-21 तक। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। अतः योएल हमें उस महान दिन की तरफ ले चलता है, परमेश्वर वापस लौट आएगा और पृथ्वी पर राज्य करेगा। वहां सियोन में परमेश्वर की महिमा एक बार फिर पृथ्वी में वैसे ही भर जाएगी जैसे समुद्र में पानी भर जाता है, और हम परमेश्वर की संतान होने के नाते जिज्ञासा से उस आने वाले दिन की तरफ देखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप जब परमेश्वर की इसराइल पर आने वाले आशीषों के बारे में बात करें तो विचलित हो जाते हैं, जो जाति के नाम पर भावनात्मक लगाव और जातिवाद का अंतर रखते हैं। लेकिन ईसाई होने के नाते मुझे जाति से कोई परेशानी नहीं होती, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता और मैं किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हो सकता। ईसाई होने के नाते मैं एक नई जाति हूं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और ईसाई होने के नाते मैं परमेश्वर की हर संतान के साथ एक हूं, चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सच्चे ईसाई होने के नाते आपको किसी भी भाई को स्वीकार करना चाहिए और वो पहले किसी भी जाति से संबंधित रहा हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। जहां तक ईसाइयों का संबंध है, हम में राष्ट्र की स्थिति का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर के साथ एक संपूर्ण नया संबंध है, एक करीबी गहरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जहां हम अपनी श्रद्धा या आस्था और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होते हैं। पहला योहन्ना अध्याय 3:2। हे प्रियो, अभी तक हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र होने के नाते मेरा परमेश्वर के साथ बहुत निकट का रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जो हर जाति के मनुष्य के लिए खुला और उपलब्ध है। अब मैं हमारी सरकार की तरफ नहीं जाऊंगा जो जाति का भेद रखते हैं, क्योंकि ये सब धर्म के या मत के मनुष्यों के लिए नहीं खुला है, ये केवल उनके लिए खुला है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। लेकिन हर आदमी जो यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करता है वो मेरा भाई है, और मुझे उसे गले लगाने में और प्यार करने में सक्षम होना चाहिए, और अगर मैं परमेश्वर की सच्ची संतान हूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर की संतान के हृदय में पक्षपात या अन्याय के लिए कोई जगह नहीं होती है। मैं दुखी हूं कि अभी भी कुछ कलीसियाओं में और संस्थाओं में अन्याय या पक्षपात मौजूद है, कभी भाषा विरोधी, कभी कभी ज्यादातर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंग्रेजी उच्चता का व्यवहार और जाति विरोधी। परमेश्वर हमारी सहायता करे, ऐसे लोग कभी भी सच्चे ईसाई नहीं हो सकते हैं और ना उसके अनुभव से ये दिखाई देता है। परमेश्वर का धन्यवाद उस एकता के लिए जो हमारे पास मसीह में है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं परमेश्वर के परिवार से संबंध रखता हूं। मैं यीशु मसीह में इस नए स्वभाव से संबंधित हूं जो मुझे परमेश्वर का एक पुत्र और आप सबका भाई बनाता है। मैं इसे प्यार करता हूं। हम सबके पास परमेश्वर के सामने बराबर खड़े होने के लिए आधार है, क्योंकि मसीह हमारा सामान्य याजक है। और अगर आप परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं तो आपकी भी वही सच्ची भावना होगी। आप भाषा विरोधी नहीं हो सकते और असल में आप परमेश्वर की सच्ची संतान हैं, तो वो ये सब दूर कर देगा। वो आपको प्यार देगा जिन्हें वो प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के आने वाले दिन की महान आशा के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, उस रहस्य खोलने वाली घटना की तरफ जो दिन बढ़ रहे हैं, उससे हमारे हृदय थर थरा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, संसार में चारों तरफ देखते हुए हम ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि आप इसे ज्यादा लंबा नहीं जाने देंगे। मनुष्य स्वयं को नष्ट करने के लिए लगभग तैयार है। संसार की शक्ति के दलाल में उच्च कोटि के हथियारों के सामने ले आए हैं और मनुष्य अपने आप को उसमें डालने के लिए लगभग पूरा तैयार है। हम युद्ध के लिए तैयारी देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि इससे क्या मिलेगा। मसीह में हमारी आशा के लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। हमारा भरोसा आप में है और परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथ में है। आप हमारे प्रभु हैं। आप हमें बचाए रखेंगे, हमें संभाले रखेंगे और हम आपके साथ सदा सर्वदा निवास करेंगे। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे आगे चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, आपने हमें दूसरी तरफ रोशनी की किरण दिखाई और इसलिए हमारे पास आशा है। जहां संसार सामने अंधकार को देख रहा है, जो उनको केवल विलोप कर सकता है और गहरी निराशा में डाल सकता है, इसके बावजूद हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, नए जन्म के द्वारा उस दिन को देखते हैं। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया राज्य जहां धार्मिकता निवास करती है। ओ परमेश्वर, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर वैसी ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। यीशु के नाम में आमीन। योवल के बाद आमोस की पुस्तक आती है। फिर से ये अंजीर बटोरने वाला। अंजीर के पेड़ के पास बांटने के लिए बहुत सारी रोचक चीजें हैं। आमोस दिनों में केवल जमीन की स्थिति ही नहीं, परंतु उसके अंदर भी भविष्य की बातें हैं और इसलिए आज ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया है जब हम परमेश्वर के वचन को समाचार पत्र के साथ रखते हैं और अपनी आंखों के आगे होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। वो आपको अच्छा समय दे। होने दीजिए कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और पूर्णता का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करें। जैसे ही आप अपने जीवन को उसे समर्पित करेंगे, तब आप उसकी आशीषों से भरी योजना जो आपके लिए उसके दिमाग में है जान पाएंगे और आपको किसी आत्मिक वरदान की कमी ना होगी। आप मसीह यीशु में हर बात में भरपूर हो। जब हम अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के गौरवपूर्ण प्रगटीकरण का इंतजार करते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे।